थोड़ा सा पीछे से देखते हैं हम 23 में, वला तकूलन्ना ली शैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कि हरगिज ना तुम कहना किसी चीज के बारे में कि मैं इसको कल करूंगा। कल मीन्स मुस्तकबिल में, इल्ला इंशा अल्लाह, मगर ये कहो कि इंशा अल्लाह। तो इंशा अल्लाह कहना जरूरी होता है जब हम फ्यूचर की कोई बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए, मैं बारहा इस चीज को बता चुकी हूं मगर फिर भी लोग इसके अंदर एहतियात नहीं करते, कि कभी भी दुआ मांगते वक्त, चाहे किसी के लिए मांग रहे हैं चाहे अपने लिए मांग रहे हैं, कभी भी उसमें इंशा अल्लाह नहीं कहना। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अल्लाह ताला आपको भलाई दे इंशा अल्लाह, अल्लाह आपके ईमान में इजाफा करे इंशा अल्लाह, अल्लाह ताला आपको आपकी बरकत अता फरमाए इंशा अल्लाह। ये हरगिज नहीं कहना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया और फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो ये मत कहो कि अगर वो चाहे तो दे दे, क्योंकि वो चाहेगा ही तो देगा ना, आपके कहने से थोड़ी है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको बरकत दे, अल्लाह ने चाहा तो आपका ईमान बढ़ जाए, अल्लाह ने चाहा तो आपको, भाई अल्लाह चाहेगा तो देगा ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह आपके हालात सही हो जाएंगे, इंशाल्लाह आपका ईमान बढ़ेगा, इंशाल्लाह आपके लिए बरकत होगी, ये कह सकते हैं। ये तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, लेकिन जिस वक्त आप दुआ मांगते हैं तो किसी को दुआ देते वक्त प्लीज इंशाल्लाह नहीं कहा करें। बहुत दफा बता चुकी हूँ, फिर भी कुरान के स्टूडेंट्स को भी नहीं समझ आती ये बात, तो साथ साथ वो इंशाल्लाह लगाते जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह कहने से आपका जो काम है अल्लाह ताला उसको कर देता है, और ज्यादा चांस होता है कि आपका वो काम हो जाए। इंशाअल्लाह नहीं कहते तो बहुत मुमकिन है कि वो काम ही ना हो, ठीक है? तो इसलिए इंशाअल्लाह बरकत के लिए भी इंसान कहता है, और ये इसके लिए भी कि वो काम अल्लाह ताला हमारा पूरा फरमा दे, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि वो काम हो या नहीं हो, ठीक है? इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला कितना बेहतरीन देखने वाला, कितना बेहतरीन सुनने वाला। अबसर का मतलब कि अल्लाह ताला सबसे कामिल है, उसके देखना जो है ना सबसे कामिल है, कोई उसके जैसा नहीं देख सकता। अबसर के अंदर ना वैसे तो अल्लाह ताला बसीर और समी और बसीर भी है, वो भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, लेकिन इसमें एक समझ ले हायर डिग्री है परफेक्शन की, कमाल की, यानी मुकम्मल जैसा वो देख सकता है, और इसमें ताकीद है, बहुत एम्फसिस है इस तरह से जब कहा जाए अब सिर भी व असमिया, ठीक है? तो जिस तरह वो बातों को सुन सकता है और जिस तरह वो देख सकता है उस तरह से कोई नहीं देख सकता। फिर यहां पे एक और बात कि ये पिछली आयत में कि जो आयत 24 थी उसका एंड देखें, तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि वो रहनुमाई करेगा, मेरा रब इससे जो राशिद है भलाई में उससे ज्यादा करीब। यानी बाज दफा इंसान अपने लिए कोई चीज भली समझ रहा होता है लेकिन उसके अंदर उसकी भलाई नहीं होती, बल्कि उसकी भलाई उसके अंदर होती है जो अल्लाह ताला को पता है कि ये चीज उसके लिए भली है, तो अल्लाह ताला वो अता कर देता है, तो अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करे। फिर देखें यहाँ पे ये जो है ना, वला युशरिक फी हुक्मी ही अहादा, वो अपने हुक्म में अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता। उसका फैसला वो भी है जो शरीयत उसने नाफिज किया, उसका फैसला ये भी है कि सूरज मशरक से निकले और मगरिब में गुरूब हो। आप नहीं कह सकते कि मगरिब से निकल के मशरक में क्यों नहीं जाता, ऐसे नहीं आप कह सकते, वो आपको पूछ के नहीं कोई करेगा। इसी तरह जिंदगी में हमारी बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो अल्लाह ताला के फैसले हैं, वो अपने फैसलों में किसी को शरीक नहीं करता कि किसी से पूछ के करे कि तुम बताओगे तो फिर मैं वैसा करूं, नाउज़ु बिल्ला, ऐसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहना जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ही है जो मेरे लिए कुछ बदल सकता है। वो कयामत के दिन अगर ये फैसला कर देगा कि कोई जहन्नुम में जाएगा तो उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता, उसके फैसले में कोई शरीक नहीं, कोई उससे कुछ करा नहीं सकता, ठीक है? और शरीयत के भी जो उसके फैसले हैं उनमें कोई भी शरीक नहीं है। ये जो वो कहते हैं कि जी फलां पता नहीं वो भी अल्लाह से कह के कुछ करा लेगा, या फलां की भी पता नहीं इतनी पहुंच है कि वो अल्लाह से बदलवा लेगा फैसले, या कुछ भी कर लेगा, या हमारा काम बनवा देगा। अल्लाह ने नहीं बनाना लेकिन ये कहेगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, ठीक है? तो जब वो किसी को शरीक नहीं करता तो फिर डायरेक्ट उससे ही मांगे ना, कि किसी और के पास जाने की क्या बात है। और इसी तरह जो भी कोई किसी कौम पे अजाब का फैसला आए, किसी कौम पे उरूज का आए, जवाल का आए, इसके अंदर सब में ये अल्लाह ही के फैसले हैं। वो अपने फैसलों में किसी को भी शामिल नहीं करता कि किसी किसी से पूछ पूछ के करे, या किसी से इजाजत ले, या किसी से मशवरा ले, नहीं। अल्लाह ताला के फैसलों पर एतराज करने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए। इस तरह मैंने आपको जैसे बताया, शरीयत के मामले में भी किसी का हाथ काटना है ये सजा है, या किसी के पर जिना की रजम की सजा है, तो कोई कहे हाँ हम तो ये नहीं समझते कि सही है, अल्लाह माफ करे, तो फिर आप क्या, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि ये अल्लाह ही के फैसले हैं, तो अल्लाह के फैसलों पर आप एतराज करते हैं। और बाज लोग इतनी जुर्रत कर लेते हैं कि वो कहते हैं ये फैसले ही ज़ालिमाना है, ये तो हुक्म ही ज़ालिमाना है, या ये तो ऐसे है। याद रखें ये अल्लाह ही का हुक्म है, और फिर इंसान सोच ले कि किसको ज़ालिमाना कह रहा है। अस्हाबे कहफ का हमने किस्सा पढ़ लिया, और हमने उसके अंदर बहुत सारी विजडम की बातें देखी हैं कि इंसान के लिए इस वाक्य के अंदर कितना सबक है। इंसान को पता चलता है कि किस तरह इंसान अपना ईमान बचा सकता है, और ये भी कि हुस्ने जन रखना कितना जरूरी है, कि अल्लाह ताला से अच्छा ही गुमान रखा जाए। और फिर अगर ऐसा वक्त आ जाए कि इंसान का ईमान खतरे में हो, तो वो अपने ईमान को बचाए, ना कि बस अपनी लग्जरीज और अपनी दुनिया और इसके पीछे अपने ईमान को कुर्बान कर दे। क्या ये भी पता चला कि इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, स्टेप उठाना पड़ता है, मूवमेंट का हमें पता चलता है कि इंसान कुछ करे। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, बस अल्लाह की अभी मदद आएगी, कोई होगी तो हम बस हम क्या कर सकते। तो फतह का वादा उस वक्त है कि जब कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, अपना तो पूरा जोर लगा लिया जाए, फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ा जाए। इन असहाबे कहफ ने जो पनाह ली थी, तो उन्होंने एक पूरा यानी अपनी तरफ से हर तरह से जो जो जिस हद तक वो कर सकते थे अपने आप को उस माहौल से निकाला और पनाह ले लिए गार में। उनकी जितनी भी इस्तात थी, जितनी भी ताकत थी, उसके मुताबिक उन्होंने मैक्सिमम कर लिया, तो अल्लाह ताला ने मदद अता फरमाई। फिर ये भी पता चलता है कि एक दूसरे से मशवरा भी लेना चाहिए, वो मशवरा भी करते हैं जब वो उसमें होते हैं गार में। फिर एक दूसरे की राय से अगर इख्तलाफ भी हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरी तरफ मुंह कर ले, एक दूसरी तरफ कर ले, बल्कि उसकी दूसरे की राय ठीक है, अपनी जगह है, मगर इंसान सबकी राय लेकर और फिर भी कोई एक फैसला दे सकता है। ये नहीं जरूरी है कि इंसान छोटी छोटी बातों को अना के मसले बना के और फिर दूसरे से नाराज हो जाए। और ये भी बहुत जरूरी है, पता चला कि जरूरी है इंसान ना कन्फ्रंटेशन में ही पड़े। इंसान को बाज हालात ऐसे होते हैं कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करना चाहिए, कि हम जरूरी नहीं किसी के साथ दू बदू कोई लड़ाई शुरू कर दे, कोई उसके साथ मतलब कोई ऐसी चीज शुरू कर दे जिससे एक मसला पैदा हो जाए। फिर हमें पता चलता है कि एक जमात जो हक पे होती है, उसके साथ जुड़े रहने में इंसान की खैर है, अकेले अकेले रहने में इंसान गुम हो जाता है, फितनों में पड़ जाता है। लेकिन जब भी आपके लाइक माइंडेड लोग हों, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं, अब वो खैर का रास्ता है तो तब भी आपको साथियों की जरूरत होती है, शर का रास्ता है तो उसमें भी साथी चाहिए होते हैं, उसमें भी इंसान के साथी होते हैं जो उसको शर में उसके साथ खड़े होते हैं और शर में उसको तावन करते हैं। तो उस वक्त भी आप खैर के साथी अपने लिए ढूंढें और उनके साथ जुड़ जाएं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि हक जो होता है, वो उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपकी एज कितनी है, आपके पास नॉलेज कितना है, या आपका स्टेटस कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक किसी एज में भी इंसान को मिल सकता है, किसी इल्म वाले को भी मिल सकता है, किसी स्टेटस के मालिक को भी मिल सकता है। और फिर ये आखिरी बात कहूंगी कि वहां कोई पैगंबर नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई इमाम नहीं था, कोई स्कॉलर नहीं था जो उनको गाइड करता। तो हमेशा आप इस इंतजार में ना बैठे रहा करें कि हमें कोई आके मोटिवेट ही करे तो हम उठेंगे। हाँ, हमें कोई मोटिवेशन देने वाला ही नहीं। अगर आप इसके इंतजार में बैठे रहे तो हो सकता है ऐसा टाइम आए कि कोई मोटिवेशन देने वाला ही ना हो, फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ। एक बात हमें और भी पता चलती है कि ये वो अपनी कौम के हमदर्द थे, उनके साथ उनको हमदर्दी थी कि अपनी कौम का चाहते थे, उनके साथ खैर ख्वाही रखने वाले थे, इसीलिए कौमी उन्होंने कहा। तो कुफर से नफरत करें लेकिन काफिर से नफरत ना करें, क्योंकि अगर आपने उससे नफरत शुरू कर दी तो आप उसको कभी भी दावत ईमान नहीं दे सकेंगे। ये जरूरत नहीं होती कि हम हर वक्त यही सोचते रहें कि बस ये तबाही हो जाए, ये खत्म हो जाए। ये अगर तबाही करनी है तो जिस रब की वो नाफरमानी कर रहे हैं, जिसका कुफर कर रहे हैं, वो खुद ही उनको तबाह कर सकता है। तो आपको बदुआओं की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम खुद तो कोई काम कर नहीं सकते ना, खुद उठ के ना तो दावत तबलीग का काम करते हैं ना कुछ करते हैं। बस ले दे के हमारा जोर बदुआएं देने पे जरूर होता है, अल्लाह ये ऐसे हो जाए, इनको गारत कर दे फलां। तो हम कोई उस उठ के इसके ऊपर कोई दावत का काम करने के लिए भी खुद को तैयार करें, ठीक है? अच्छा, अब जब ये सारी बात यहाँ पे खत्म हो गई है, असहाबे कहफ का किस्सा मुकम्मल हो गया, आज हम आगे इससे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि हम क्या करें। देखिए, अब उनके पास एक कहफ था जिसमें जाके वो छुप गए, हम फितनों के दौर में क्या करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सूरत में आपको बहुत जबरदस्त इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने क्या करना है, क्योंकि फितने में बहुत सारे लोग हर वक्त परेशान होते हैं। हम सभी परेशान हैं कि क्या करें, फितने इतने ज्यादा हैं, हम क्या करें। तो उसके अंदर आपको रहनुमाई देती है ये सूरा, क्योंकि हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज में हमें गाइड करता है। तो क्या फितनों के दौर में गाइड नहीं किया होगा? तो अल्लाह ताला ने हमें क्या गाइडेंस दी है? वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, आप तिलावत कीजिए जो वही किया गया आपकी तरफ, मिन किताबि रब्बिक, तेरे रब की किताब में से, आपके रब ने जो किताब नाजिल की है उसमें से जो आप पे वही किया गया है वो आप तिलावत कीजिए। सबसे पहले तिलावत का माना समझते हैं कि तिलावत किस चीज को कहते हैं। तिलावत सिर्फ ये जो जैसे हम पढ़ते हैं बगैर समझे हुए, इसको तिलावत नहीं कहते। तला यतलू तिलवन कहते हैं फॉलो करने को, और आप मीनिंग को फॉलो करते हैं इसमें, यानी आपको समझ आ रही होती है, आप उसको समझ समझ के पढ़ोगे तभी मीनिंग को फॉलो करेंगे। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि फॉलो करें, यानी इसके अहकामात को फॉलो करें, जो इसमें हुक्म दिया गया फॉलो करें। लेकिन तब भी बात तो वही आ जाती है कि जब कुछ समझ आएगा तो फॉलो करेंगे ना। और हमारा इस कोर्स का मकसद ही ये है कि हम कुरान करीम को समझें और इसको समझना सीखें कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो ये बताया गया कि ये अब तुम्हारी पनाहगाह बनेगी, और ये हुक्म दिया गया वत्सलू, आप तिलावत कीजिए इसमें से जो आपकी तरफ वही किया गया है, अल्लाह की किताब में से, तेरे रब की किताब में से। क्या फॉलो करना है? जो वही किया गया, किसकी तरफ से आया? अलीम की तरफ से नहीं कहा गया, हकीम की तरफ से नहीं कहा गया। अल्लाह ताला अलीम भी है, हकीम भी है, रब भी का, तेरे रब की तरफ से आया। क्यों ऐसे कहा गया? इसलिए कि इससे जो कनेक्शन बनता है ना, वो अलीम और हकीम से नहीं बनेगा। और इससे क्या कनेक्शन बनता है? क्योंकि रब के अंदर मोहब्बत है, इस लफ्ज के अंदर ना मोहब्बत है। इसलिए ही तो आप कभी परेशान हो तो या रब, या कोई दुआ भी इंसान करता है दिल से निकलती। देखिए, सारी कुरान में दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, हमारे रब है। तो रब कौन होता है? जिसने पैदा किया आपको, जो आपको पालने वाला है, जो आपको परवरिश करता है, जो आपका सस्टेनर है, आपको कायम रखने वाला है। तो जो खालिक मालिक पालने वाला है, देखिए ना, ये किसकी सिफत होती है दुनिया में, इंसानों में किसकी सिफत होती है? माँ की ना, वो पैदा करती है पालती है, ये माँ की सिफत होती है। और उसके साथ क्या चीज जहन में आती, केयर, मोहब्बत आती है ना। तो रब के लफ्ज के अंदर मोहब्बत है, केयर है, यानी वो जो तुम्हारे पालने वाला है ना, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारी तरफ जो वही कर रहा है, उसने जो किताब भेजी उसमें से पढ़िए आप। इसका मतलब है कि उस जात की तरफ से है जो तुम्हारी केयर करता है, तुमसे मोहब्बत करता है। जाहिर है वो तुम्हें पालने वाला है, पालना मोहब्बत से ही तो होता है। तो वो तो क्यों तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज भेजेगा जो तुम्हें हर्ट करने वाली हो, या जो तुम्हें मुशक्कत में डाल दे, या तुझमें परेशान कर दे? हर किस नहीं, उसने तुम्हें पैदा किया। जैसे माँ नहीं कहती, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें पाला पोसा है, मैं कोई तुम्हारा बुरा चाहूंगी? कहते ना आप। तो अल्लाह ताला रब का लफ्ज ला के हमें समझा रहा है कि उसको तुम्हारी केयर है, तो उसने तुम्हारे लिए ये नाजिल की है ना, तुम्हें ये तुम्हारे लिए भेजी है। और इससे पढ़ो तुम, और अगर और कोई भी अल्लाह ताला की सिफत लाई जाती तो उससे इस तरह का पर्सनल एक टच ना आता। लिहाजा इस तरह से कह के हमें बता दिया गया कि अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ, जैसे कहफ वाले कहफ में जाके हिफाजत में चले गए थे, तुम अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे जब ये कुरान को पढ़ोगे। क्या तो खास तौर पे जो दावत का काम करने का इरादा रखते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का, वो तो बहुत ही काम करे, इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था, कुरान के जरिए दावत देना। तो इसलिए इसको पढ़ते ही रहना है। वत्सलू, हुक्म है, हुक्म। लोग पूछते हैं ना, ये फर्ज है क्या, ये जो आप कह रहे हैं ये कोर्स करें, ये सीखें कुरान को, ये फर्ज है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है कुरान पाक में, वत्लू, तिलावत कीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि इसका माना क्या है, समझे बगैर तो तिलावत थोड़ी होती, वो तो किरात ही होती है, अभी जिसको रीडिंग कहते हैं, मेयर रीडिंग है बस। तो इसलिए याद रखिए कि फॉलो करना जरूरी है इसको, और फॉलो तभी होगा जब मीनिंग पता होगा। और ये भी हमें पता चला कि हमने फॉलो करना किसको है, माँ उही इलेक, जो आपकी तरफ वही किया गया, आपकी तरफ वही ये कुरान भी है और हदीस भी है। इसका मतलब है लोगों की ख्वाहिशात को नहीं फॉलो करना, लोगों की बातों को और उनकी पसंद और नापसंद को नहीं फॉलो करना, किसको फॉलो करना, इस कुरान को। समझ आई? लिहाजा ये हम जो फॉलोइंग करते हैं और ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जो भी हमारे ट्रेंड्स हैं, जो भी आजकल चलता है, जो भी इन है, अगर वो कुरान और हदीस से कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता, आपकी जिंदगी के आम मामूलात हैं, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो कुरान और हदीस से कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, तो आपको इसको फॉलो करना है। ठीक है, ला मुबद्दिला लि कलिमाती, उसके कलिमात कभी बदल नहीं सकते, कोई बदलने वाला है ही नहीं। तो आपका मतलब है कि कुरान को बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की? की है, बिल्कुल की है। और आज भी कई लोग कहते हैं जी फलां यहूदियों ने कोई एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर कुरान है, वो नहीं, वो तो कुरान है ही नहीं। ये है कुरान जो अल्लाह ताला की तरफ से, उसको कुरान मत कहा करें। तो ये कुरान, इसके बदलने वाला इसकी कलिमात को कोई नहीं, और आज कोई दुनिया में ये साबित नहीं कर सकता कि इस कुरान में कभी कोई चेंज आई है, कोई भी नहीं साबित कर सकता। और ये भी कि पूरी दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे पास वो किताब है जो हमारे पैगंबर से लेकर आज तक वैसी की वैसी है, कि इसमें एक हर्फ की भी तब्दीली नहीं, कोई भी नहीं दावा कर सकता, ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, ना हिंदू, ना कोई भी नहीं, कि कभी कोई चेंज आई नहीं। पर ये कितना बड़ा मोजा है, ये है मिरेकल इस कुरान का। तो अब इसके बाद क्या हमें मिरेकल चाहिए? और अल्लाह ताला ने ये दावा फरमाया, ये देखिए कोई दावा कर भी नहीं सकता, किसी भी आप मजहब वाले को पूछ लें या किसी भी किताब के हामिल को पूछ लें, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे नहीं हो सकता, तब्दीलियां होती हैं। और यहां पर लेटर्स में भी तब्दीली नहीं हुई, वर्ड्स में भी तब्दीली नहीं हुई, और दूसरी ये बात है कि इसका मीनिंग भी ठीक है, लोगों ने अपने अपने मुताबिक मीनिंग्स बनाने बनाए हैं इसके अंदर से ही। कोई अपनी बिदात के लिए भी मीनिंग निकाल लेगा, कोई शिर्क का भी मीनिंग निकाल लेगा, कोई तरह की गुमराहियां भी इसी में से निकाल लेते हैं लोग। लेकिन याद रखिए जो हक बात है ना, जो इसका असल मीनिंग है, जो ट्रूथ है, वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। कि कैसे? वो हदीस की फॉर्म में प्रिजर्व्ड है कि कोई चाहे अगर के अपने मनमाने माने करे तो करता फिरे, लेकिन जो हक का तलाश करने वाला होगा वो जाके हदीस देखे, उसको पता चल जाएगा इसका ये माना है, इसका ये माना नहीं है जो ये बता रहा है, जो ट्विस्ट ये कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात पता चली, लिकलिमात ही, उसके कलिमात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बात है कि ये बात साबित करती है कि इस कुरान में जो भी वर्ड्स हैं वो अल्लाह ताला के हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एक फिरका गुजरा है, अशायरा उनका नाम था, वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह ताला की कलाम है इसमें वर्ड्स अल्लाह ताला के नहीं है, सिर्फ मीनिंग अल्लाह का है। जिब्राइल अलैहि सलाम ने खुद ही वर्ड डाले हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहि सलाम के दिल में मीनिंग डाल दिया, तो वर्डिंग उन्होंने खुद ही बना ली। और तो वो ये मानते नहीं कि अल्लाह ताला के अल्फाज है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि यहाँ पे कहा गया कलिमाती ही, उसके कलिमात को। अगर ये मीनिंग ही होता तो मीनिंग को, यानी अल्लाह ताला के पास मीनिंग को जाके कौन बदल सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं बनती। मीनिंग तो उसके पास ही है, मीनिंग तो नहीं यहाँ पे। तो ये उसके कलिमात हैं, और कलिमा जब कहते हैं तो मीनिंग को कलिमा नहीं कहते, वर्ड को कहते हैं। और ये भी हमें यहां से पता चला कि इस दीन इस्लाम का जो सोर्स है कुरान, ये रहती दुनिया तक, कयामत तक ये ऐसे ही रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। तो ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि जो है ना, हाय उन्होंने बदल दिया, और इन मैसेजेस को आगे भेजने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनको इग्नोर किया करें। मत इस तरह से उन लोगों को और ज्यादा शोहरत दें जो गलत काम करते हैं, बल्कि इग्नोर करने में बेहतरी है, ताकि ना ऐसे लोगों को अपनी मौत खुद मर जाएंगे वो। आए इतने आए 1400 साल में, मतलब है आपका कोई आज ही तो नहीं हुआ, इतने लोगों ने कोशिशें की, कहाँ गई उनकी कोशिशें, किधर है उनके वाले लिखे भी चीजें जो वो कहते हैं कि ये है कुरान, वो क्लेम करते हैं, हम तो नहीं कहते वो कुरान है, तो उसको कुरान ही ना कहें, वो क्लेम करते हैं तो वो कुरान नहीं, वो तो अभी अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम अपना हिस्सा डालें और उसके अंदर उसको शोहरत देते रहे, देखो जी उन्होंने ये फिल्म बना ली, देखो जी उन्होंने ये किताब निकाल ली, देखो उन्होंने ये वेबसाइट बना ली। तो ये इसको चीजों को इग्नोर किया करें। और ये भी हमें पता चलता है कि वो कोई फैसला भी कर दे तो उसका फैसला भी बदल नहीं सकता, उसके कलिमात नहीं बदल सकते ना, उसकी कहीं भी बात नहीं बदल सकती। और इसमें फिर हम उसी तरफ अगर आते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कह दिया कयामत के दिन के कोई जहन्नमी है, तो कोई उसके फैसले को नहीं बदल सकता, कोई उसकी बात को यानी चेंज नहीं कर सकता, यानी उससे कुछ और कहलवा ले कोई। उसने बात कह दी ना, उसने फैसला दे दिया, अभी तो उसकी बात है, उसके कलेमात है, तो फिर कौन वहां पे खड़ा होके बचाएगा? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और इसका मुहाफिज भी अल्लाह ही है, अल्लाह ताला ही इसको प्रिजर्व रखने वाला है, इसको सेव करने वाला है। उसको कोई जरूरत नहीं किसी की के कोई इसकी रखवाली करे, अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम कर लिया। आज भी देखें कितने हजारों लोग हैं जिनके सीने में ये कुरान है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर पेपर वाला कुरान कोई कॉन्फिस्केट कर ले, कोई नहीं उसको लोगों तक पहुंचने दे, तो सीनों में कुरान मौजूद है। और ये सिर्फ इस उम्मत का ही एजाज है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और तू नहीं पाएगा उसके सिवा कोई पनाह की जगह, जिसको अल्लाह ना पनाह दे उसके लिए कोई पनाह की जगह नहीं। वो किसी को पकड़ना चाहे तो वो कहीं जाके छुप नहीं सकता कि मैं जाके फलां के पास पनाह ले लूं, मैं उसके दामन में पनाह ले लूं, मैं उसकी, वो मुझे बचा लेगा, वो मेरा कोई कारसाज बन जाएगा। नहीं, जिसका अल्लाह ना बना तो उसका कोई भी नहीं है। तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको पनाह दे दी कहफ में, तो कैसे उनके लिए अल्लाह ने निजाम चला दिया पूरा कि वो सेफ रहे। अपने सूरज को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मखलूक को एक कहफ वाले, यानी छोटे से लड़के ही थे ना, उनके लिए काम में लगा दिया, एक कुत्ते को काम में लगा दिया। कि आप अल्लाह ताला जिसको पनाह देना चाहे दुनिया नहीं ढूंढ सकती उसको, या दुनिया नहीं उसको कुछ बिगाड़ सकती जिसको अल्लाह पनाह दे दे। इसलिए अपने लिए अल्लाह ताला को ही अपना मुहाफिज समझना चाहिए कि वो ही मेरा मलजा है, अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं, उसको ना मैं नाराज करूं। और ये ना सोचूं कि वो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तो खैर है, तो कोई और ना नाराज हो जाए, फलां पीर, फलां मुर्शिद, फलां जो भी है, वो ना हमसे कहीं नाराज हो जाए, इन्होंने ही हमें वहां पे पार कराना है। कैसे कोई पार करा सकता है, कुरान कहता है कि तुम उसके अलावा कोई पनाहगाह पा ही नहीं सकते। लिहाजा इसका मतलब है कि अगर कोई पनाहगाह है तो वो सिर्फ, या कोई हिफाजत कर सकता है तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि चाहे दौरे फितन है ये, या दज्जाल का जमाना आ जाता है, इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए पनाहगाह क्या है। और कई लोग हिफाजत चाहते हैं इस चीज से कि वो आंख बनी हुई है, कोई नीली आंख है उसको लगा देते हैं, वो घर के दरवाजे के ऊपर लगाई हुई है ऐसी चीजें जिसमें आंख बनी हुई है, कहीं हाथ पूरा पंजा बना हुआ है उसके बीच में आंख बनी हुई है, ये आपकी पनाहगाह है? कितने कमजोर सहारे आपने लिए कि दरवाजे के ऊपर वो लगाया हुआ। तो ये चीजें, ऐसी शिरकिया चीजों को छोड़ देना चाहिए। और फिर मैं ये छल्ला पहन लूंगी इस उंगली में, ये पत्थर पहन लूंगी, ये मुझे पनाह देगा या मेरी हिफाजत करेगा या मुझे ऐसे बचाएगा, तो ये सारी शिरकिया बातें। और फिर ऐसे लोगों के पास जाना जिनके पास आप समझते हैं कि इनको बस राजी कर देंगे तो ये बस, हम हमारे साथ ये हो गए ना, तो बस फिर वहां पे इन्हीं का पल्ला पकड़ के हमने जाना है। सारी बातें इसके बाद समझ आ जाती हैं कि इनमें से कोई भी सही नहीं है, पनाहगाह सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا